Iran Radio Podcast.
एक ईरानी ने बहुत ही कम संसाधनों के साथ लेकिन होशियारी से काम लेते हुए डचों को खार्क द्वीप से बाहर कर दिया। हॉलैंड के लिए ये बड़ी हार थी जो उस जमाने में एक महाशक्ति माना जाता था और दुनिया भर में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 37वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो हम बात कर रहे थे हॉलैंड की शिकस्त की। हॉलैंड अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच ईरान के खार्क द्वीप में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। हॉलैंड फिर कभी भी इस हार की भरपाई नहीं कर सका। ये घटना ईरान पर उस समय शासन करने वाले करीम खान जंद के लिए बहुत आशाजनक थी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें ये चिंता थी कि खार्क द्वीप पर मीर मोहन्ना जैसे व्यक्ति का कब्जा है। करीम खान जंद का मानना था कि खार्क पर हमला करने और मीर मोहन्ना को गिरफ्तार करने के लिए शक्तिशाली तोपों से लैस बड़े यूरोपीय जहाज़ों की ज़रूरत है। इसीलिए जब पियरो नामक एक फ्रांसीसी व्यापारी वार्ता के लिए मिलने आया तो उन्होंने इस मुलाकात को एक अच्छे अवसर के रूप में देखा और फ्रांसीसियों को आश्वस्त करने का प्रयास किया और उन्हें मीर मोहन्ना के खिलाफ युद्ध के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फ्रांसीसी सरकार के प्रतिनिधि के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने जहाज़ों के साथ मीर मोहन्ना पर हमला करते हैं तो खार्क में व्यापार पर उनका एकाधिकार रहेगा, यानी उसके बाद सिर्फ फ्रांसीसियों को उस द्वीप को व्यापार के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने करीम खान के प्रस्ताव को अपने देश की सरकार के सामने रखा, लेकिन फ्रांसीसी सरकार अपनी नौसेना को फारस की खाड़ी में भेजने के लिए तैयार नहीं हुई, जिसकी वजह से ईरान और फ्रांस के बीच ये संधि नहीं हो सकी। अंग्रेज इन घटनाओं पर नज़र रखे हुए थे। इससे पहले कई बार करीम खान के साथ उनकी वार्ताएं नाकाम हो चुकी थीं। उन्हें लगा कि उनके साथ फिर से वार्ता शुरू करने के लिए ये अच्छा मौका है। उन्होंने करीम खान से वादा किया कि वे मीर मोहन्ना को खार्क से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि इस द्वीप पर व्यापार पर उनका एकाधिकार होगा। इस बार करीम खान ने अंग्रेज़ों की शर्त मान ली। ब्रिटिश जहाज़ों ने द्वीप को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन जल्द ही वो पीछे हटने के लिए भी मजबूर हो गए। मीर मोहन्ना के साथ जंग में अंग्रेज़ों को कोई सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद उन्होंने उसी साल ईरान में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया और व्यापार में व्यस्त हो गए। खार्क युद्ध में अंग्रेजों के कमजोर प्रदर्शन से नाराज करीम खान ने बंदर अब्बास में एक बड़ी फौज के इकट्ठा होने का आदेश जारी कर दिया। तट पर एक बड़ी संख्या में फौज इकट्ठा हो गई और छोटी बड़ी नावें भी खार्क पर हमले के लिए तैयार हो गईं। इतनी बड़ी फौज को द्वीप की ओर बढ़ते देखकर मोहन्ना के साथ ही भयभीत हो गए। एक दिन जब मीर मोहन्ना अपने कुछ दोस्तों के साथ आराम से खार्क के बाजार में चहलकदमी कर रहा था, उसके एक रिश्तेदार के नेतृत्व में एक हथियारबंद गुट ने उस पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में द्वीप का बाजार युद्ध का मैदान बन गया। मीर मोहन्ना ने जब देखा कि धीरे धीरे दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो वो अपने बचे खुचे साथियों के साथ तट पर पहुंचने में सफल हो गया और अंजाम से बेखबर वहां मौजूद एक टूटी फूटी नाव में सवार हो गया। एक दिन बाद जब मीर मोहन्ना और उसके साथियों की नाव तट पर पहुंची तो तट पर बने घरों को देखकर वो निराश हो गया, क्योंकि वो बसरा शहर था जहां के लोग मीर मोहन्ना के खून के प्यासे थे और उससे बदला लेना चाहते थे। मीर मोहन्ना और उसके साथियों को जल भोजन की ज़रूरत थी, इसलिए वे नाव से उतरने के लिए मजबूर थे। اس امید کے ساتھ کہ کوئی انہیں نہیں پہچانے گا وہ شہر میں داخل ہو گئے، لیکن میر مہنہ اور اس کے ساتھیوں دوارا ستائے ہوئے لوگوں نے ترنت انہیں پہچان لیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ لوگوں نے میر مہنہ اور اس کے ساتھیوں کو بصرہ کے شاسک کے حوالے کر دیا اور اس نے ترنت مہنہ کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ جب میر مہنہ کی پھانسی کی خبر کریم خان زن تک پہنچی تو وہ بہت غصے میں آئے، کیونکہ وہ اسے زندہ پکڑنا چاہتے تھے اور بصرہ کے شاسک نے بنا انہیں سوچنے دیے اسے پھانسی پر لٹکا دیا تھا۔ بصرہ اور بغداد ان دنوں عثمانی سامراجی کے ادھین تھے اور وہاں کے شاسکوں نے اس سے پہلے بھی کئی معاملوں میں کریم خان کو پریشان کیا تھا۔ ایرانی لوگ عثمانی شاسن کے ادھین کربلا اور نجف کی زیارت کرنے جب جاتے تھے تو انہیں بغداد کے شاسک دوارا دی جانے والی یاتناؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جس سال عراق میں پلیگ کی بیماری پھیلی اس سال وہاں بڑی سنکھیا میں ایرانی تیرتھ یاتریوں کی بھی جانیں گئیں۔ اس استھتی سے بغداد کے شاسک نے لابھ اٹھایا اور ان کی سمپتی ہڑپ لی۔ جو لوگ اس مہاماری میں زندہ بچ گئے تھے انہوں نے اپنی سمپتی لینے کا پریاس کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور آخر کار انہوں نے کریم خان زند کے یہاں شرار لی۔ یہ شاسک دوسری جگہوں پر بھی ایرانیوں کو لوٹ رہا تھا۔ اس سمے جو لوگ ایران سے حج پر جاتے تھے انہیں عراق ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ بغداد کا شاسک ادھر سے گزرنے کے لیے ہر ایرانی حاجی سے پیسے وصول کرتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ کریم خان زند نے بغداد کے گورنر کو کئی پتر لکھے، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے عثمانی سلطان کو پتر لکھا، حالانکہ سلطان نے بھی بغداد کے گورنر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ 1188 ہجری میں کریم خان نے بصرہ کے گورنر کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایرانی فوج کو بصرہ کی گھیرا بندی کرنے کے لیے ایک بڑی ندی اروند رود کو پار کرنے کی ضرورت تھی۔ ایرانی سینکوں نے چھوٹی ناووں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ندی کے اوپر پل بنا دیا، لیکن اچانک کئی جہازوں اور توپ خانے کے حملے نے انہیں چونکا دیا۔ یہ جہاز بصرہ استھت برٹش ویاپار پرتنیدھی کے تھے۔ انگریزوں نے بصرہ کے تٹ پر کریم خان زند کے سینکوں کو آشچرچکت کر دیا تھا۔ ایرانیوں کو بالکل امید نہیں تھی کہ اس یدھ میں ان کا سامنا انگریزوں سے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بھی جواب میں اروند ندی کے تٹ پر استھت توپ خانے سے گولہ باری کی۔ ایرانی سینا کی گولہ باری اتنی تیور تھی کہ برٹش جہاز پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور ایرانی سینا بصرہ کی اور بڑھ گئی۔ بصرہ کی گھیرا بندی لگ بھگ ایک سال تک چلی اور انتتہ شہر کے دوار ایرانی سینکوں کے لیے کھول دیے گئے اور بصرہ ایران کے ادھین ہو گیا۔ انگریز جو بصرہ کے گورنر کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف لڑے تھے ایرانیوں کے پرتیشودھ سے بھیبھیت تھے۔ حالانکہ ایرانی سینا کے کمانڈر نے آدیش دیا کہ کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب کریم خان زند کو یہ خبر ملی کہ انگریزوں نے بصرہ میں ایران کے خلاف لڑائی میں بھاگ لیا ہے تو انہوں نے بوشہر میں انگریزوں کے ویاپاری کیندر کو بند کرنے اور سبھی ویاپاریوں کو ایران سے باہر نکالنے کا آدیش دیا۔ اس پرکار برٹین کو ایک بار پھر ایران سے باہر نکلنا پڑ گیا۔ بصرہ پر نینترن کے 5 سال بعد وہ ویکتی جو شکار کے بہانے شیراز سے نکلا تھا کریم خان زند کے قلعے سے سوچنا کی پراپتی کی پرتیکشا میں تھا۔ اس شخص کا نام آغا محمد خان قاجار تھا جو 30 سال پہلے کریم خان زند کے خلاف اپنے باپ کے ساتھ لڑا تھا اور اس نے قاجار قبیلے کو اپنے نینترن میں کر لیا تھا۔ اس دن سے آغا محمد خان کریم خان کے قلعے میں بندھک کے روپ میں رہ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ ایک دن وہ اپنے قبیلے میں واپس لوٹے گا اور خان کے خلاف ودروہ کرے گا۔ پچھلے کچھ سمے سے کریم خان بیمار تھا۔ ایک دن جب اس نے دیکھا کہ خان کی حالت کافی خراب ہے تو شکار کے بہانے شیراز سے باہر نکلا اور اپنی پھوپھی کے جو کریم خان کی پتنی تھی کہا کہ جیسے ہی خان کا ندھن ہو جائے ترنت اسے سوچنا دے۔ محل کے ایک نوکر نے جب چپکے سے کریم خان کی موت کی خبر آغا محمد خان تک پہنچائی تو ترنت اس نے اپنے قبیلے کا رخ کیا۔ کریم خان کی موت کے بعد اس کے وارثوں میں اتراधिकारी بننے کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے آغا محمد خان کو اپنے قبیلے کے یودھاؤں کے سمرتھن سے اتری ایران کے ایک بھاگ پر نینترن کرنے کا موقع مل گیا۔ کریم خان کی موت کے بعد زند پریوار کے 6 لوگ تخت پر بیٹھے، جس میں سے انتم ویکتی کا نام لطف علی خان تھا۔ یہ لوگ کمزور شاسک ثابت ہوئے جنہیں کسی بھی سمے ان کے کسی پرتیدوندوی دوارا اکھاڑ پھینکنے کا ڈر ستاتا رہتا تھا۔ इन शक्तिहीन राजाओं को कभी कभी विदेशियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उनमें से एक ने खार्क में व्यापार का एकाधिकार फ्रांसीसियों को सौंप दिया और बदले में कोई भी विशिष्टता हासिल नहीं की। दूसरा शासक अपने शासन के प्रति रूसियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कॉकेशस इलाके के, जिसमें आज अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया शामिल हैं, रूसियों को सौंपने के लिए तैयार हो गया। तख्त पर बैठने वाले तीसरे शासक के दौर में अंग्रेज़ों ने जब किश्म द्वीप पर कब्जा कर लिया तो उसने उन्हें बाहर निकालने के बजाय उनका टैक्स ही माफ़ कर दिया और पूरे ईरान में उन्हें व्यापार का अधिकार दे दिया। अंग्रेज़ों ने इस आदेश का दुरुपयोग किया और दावा किया कि पूरी फारस की खाड़ी में व्यापार पर उनका एकाधिकार हो गया है, यानी किसी दूसरे देश को अब यहाँ व्यापार का कोई अधिकार नहीं। इसके बाद से ईरान में व्यापारिक गतिविधियों में बहुत धक्का लगा। इस दौरान आगा मोहम्मद खान ने उत्तरी ईरान में अपनी शक्ति में वृद्धि शुरू कर दी। अभी करीम खान की मौत को ज़्यादा समय नहीं बीता था कि आगा मोहम्मद खान काजार ने ईरान के मध्य इलाकों पर भी हमले शुरू कर दिए। उसके बाद उसने शिराज पर हमला करने और जंद शासन को उखाड़ फेंकने का फैसला किया। उस समय इस शहर में लुत्फ अली खान तख्त पर बैठा था। उसे अपनी सेना को तैयार करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। इसके लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि सर हारफोर्ड जोन्स को शिराज के किले में दावत दी। इस मुलाकात में लुत्फ अली खान ने अपना बाजू बंद खोला और जोन्स के सामने रख दिया। दुनिया का सबसे बड़ा पिंक हीरा दरियाए नूर और मून क्राउन नामक एक बड़ा पीला माणिक इस बाजू बंद पर चमक रहा था। अली खान ने जोन्स से कहा, वास्तव में इन रत्नों की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन आज इन्हें बेचने के लिए हम मजबूर हैं। जोन्स ने इन दो रत्नों की जो कीमत लगाई उसे सुनकर लुत्फ अली खान के सलाहकार हंसने लगे, लेकिन जोन्स उनके साथ सहमति बनाने के लिए किले में ही ठहरा रहा। इससे पहले कि जोन्स और शाह लुत्फ अली खान किसी सहमति पर पहुंचते, शाह एक स्थानीय विद्रोह को कुचलने के लिए शिराज से बाहर निकला। जोन्स शिराज में ही शाह का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब ये इंतज़ार व्यर्थ था क्योंकि उसके बाद लुत्फ अली खान कभी शिराज नहीं लौट सके। शिराज के मेयर का मानना था कि जल्द ही शहर पर आगा मोहम्मद खान काजार का कब्जा होने वाला है, इसलिए उसने लुत्फ अली खान पर शहर के द्वार बंद कर दिए। शहर के दूसरे लोगों की तरह जोन्स भी जाल में फंस चुका था, लेकिन आखिरकार बहुत ज़्यादा धौंस और धमकियों के बाद मेयर ने उसे शिराज से निकलने की अनुमति दे दी। जोन्स ने शहर के बाहर एक बार फिर लुत्फ अली खान से मुलाकात की। इस मुलाकात में भी उसने अपने रत्न जोन्स को बेचने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि अब उसे पहले से भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। जोन्स को अच्छी तरह पता था कि शाह को पैसे की कितनी शदीद ज़रूरत है, इसलिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसके बजाय लुत्फ अली खान जंद को एक दूसरा प्रस्ताव पेश किया। जोन्स का मानना था कि लुत्फ अली खान को शिराज पर हमले के बजाय दक्षिण की ओर जाना चाहिए और मदद के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क करना चाहिए। वो चाहता था कि शाह के पैसे की ज़रूरत बनी रहे और बेघर शाह अंग्रेज़ों से मदद की भीख मांगता रहे, लेकिन लुत्फ अली खान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया। उन्होंने काजार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, यहाँ तक कि 1209 में आगा मोहम्मद खान काजार के हाथों गिरफ्तार हो गया और आखिर में मारा गया। इस तरह जंदिया राजवंश के शासन का अंत हो गया और आगा मोहम्मद खान काजार ने काजारी राजवंश की बुनियाद डाली। सर हारफोर्ड जोन्स के, जो लुत्फ अली खान जंद के साथ मुलाकातों में दोस्ती का दावा करता था, अब उसके दुश्मनों के साथ यानी काजारी राजवंश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, जो पॉडकास्ट आपने सुना वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं।